आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सिंधुजा आचार्य है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 यू कैन डू की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से कुछ बच्चे अपनी समस्याएं डॉक्टर भटनागर और डॉक्टर स्मिता गैरासिया को बताते हैं, जो कि बहुत अच्छे काउंसलर थे, और उन समस्याओं का समाधान पाते हैं। रमेश, जो कि दूदू से है और कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, उनकी ये समस्या थी कि वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वह पूरे मंथ का एक प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसे भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर भटनागर उन्हें कहते हैं कि आप पूरे मंथ का टाइम टेबल ना बनाकर एक दिन का टाइम टेबल बनाएं, फिर उसे फॉलो करें। जैसे जैसे आपको टाइम टेबल फॉलो करने की आदत हो जाएगी तो आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे, और आप योग की अभ्यास कीजिए ताकि आपको आपका माइंड मजबूत बनेगा और आप आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। फिर अगली समस्या बूंदी से मूमल बताती है। वह उनकी फ्रेंड की मुहासों की प्रॉब्लम के बारे में पूछती हैं कि उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो डॉक्टर गरासिया उन्हें बताती है कि यह टीनएजर्स में बहुत आम समस्या है, इसके लिए इतना निराश होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने हाथों से और अपने नाखूनों से अपने स्किन और पिंपल्स को टच नहीं करना है। दिन में 2 या 3 बार माइल्ड सोप से और पानी से चेहरे को साफ करना है। टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, इनके बहकावे में नहीं आना है। हेल्दी खाना है, हरी सब्जियां, सलाद, फल आदि खाने हैं। सही मात्रा में पानी पीना है और ऑयली और स्पाइसी फूड, चॉकलेट और फास्ट फूड को ना कहना है, उन्हें नहीं खाना है। फिर अगला क्वेश्चन पोखरण जैसलमेर से रहीम करते हैं। वह ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्लड डोनर को HIV हो सकता है। उनका यह पूछना था कि क्या HIV पेशेंट को ब्लड डोनेट करना सेफ होता है। तो डॉक्टर भटनागर पहले उन्हें बताते हैं कि कोई भी इंसान जो 18 साल से कम का हो वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने की एज 18 या उससे ऊपर की है। फिर उसने डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि HIV पेशेंट को भी ब्लड डोनेट करना उतना ही सेफ है जितना किसी और को, क्योंकि ब्लड डोनेशन में जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें स्टेरिलाइज्ड किया जाता है, यानी उन्हें साफ किया जाता है और उन्हें जर्म फ्री बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देवली उदयपुर से रहीम करते हैं। उन्हें गुटखा चबाने की बहुत बुरी आदत है जिससे उनके दांत खराब हो चुके हैं। वो कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं और बीते 2 सालों से गुटखा चबा रहे हैं। वे दिन में 7 से 8 बार गुटखा चबाते हैं। तो डॉक्टर भटनागर उनकी हॉबीज के बारे में पूछते हैं। तो वो अपनी हॉबीज न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना बताते हैं, और वो तबला भी बजाते हैं। डॉक्टर भटनागर उन्हें कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब जब भी आपको गुटखा चबाने की इच्छा हो तो आप कोई अच्छा सा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लें, टीवी पे कुछ देख लें या तबला बजा लें, अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, उनसे बात करें, अपनी पसंद के गेम्स खेलें, अपना दिमाग अलग अलग गतिविधियों में इंगेज्ड रखें, तो इससे आप आसानी से अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पा लेंगे। तो बच्चों, जब चैप्टर एंड होता है और जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर भटनागर और डॉक्टर स्मिता गैरासिया के सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट रहता है। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम इसकी ग्लॉसरीज में जो वर्ड मीनिंग है वो देखते हैं। काउंसलर, एडवाइजर, गाइड। काउंसलर बच्चों ऐसा पर्सन होता है जो आपको एडवाइस देता है, जो आपको सलाह देता है या जो आपको गाइड करता है, यानी आपका मार्गदर्शन करता है। तो काउंसलर यानी ऐसा इंसान जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सलाह देता है। इनडिसिसिवनेस, स्टेट ऑफ नॉट टेकिंग डिसीजन ईजिली। इनडिसिसिवनेस एक ऐसी स्थिति होती है जब आप कोई भी निर्णय आसानी से नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप जल्दी से और आसानी से डिसीजन नहीं ले पाए उसे कहते हैं इनडिसिसिवनेस। कॉन्सेंट्रेट, गिव ऑल अटेंशन टू। कॉन्सेंट्रेट करना यानी आपका सारा अटेंशन, आपका सारा ध्यान एक जगह पे लगा देना, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। बिल्डअप, इंक्रीज। बिल्डअप करना यानी किसी भी चीज को बढ़ाना। जैसे हम चैप्टर में देखते हैं, जब रमेश अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो पूछता है कि हाउ कैन आई बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस, मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं। तो बिल्डअप करना यानी किसी भी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बच्चों यानी होपफुल। आप जब फुल ऑफ होप होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है होपफुल, तो जब आपको हर चीज में उम्मीद बनी हुई रहती है, तो ऐसा इंसान जो हमेशा उम्मीदों से, आशाओं से भरा होता है, उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। गोल, एम। गोल का मतलब होता है बच्चों आपका लक्ष्य। किसी भी चीज में जो आप लक्ष्य निर्धारित करने के, मुझे ये अचीव करना है, मुझे यह पाना है, तो उसे कहते हैं गोल। गेट हैबिचुएटेड, गेट यूज्ड टू, गेट अकस्टम्ड टू। बच्चों गेट हैबिचुएटेड मतलब जब आपको किसी चीज की आदत हो जाए, जब आपको किसी चीज की, जैसे आप अगर कोई डेली कोई सोप ओपेरा यानी आप कोई धारावाहिक देखते हो, या आप डेली जल्दी उठते हैं, डेली जल्दी सो जाते हैं, डेली एक समय पे खाना खाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उस चीज की आदत हो जाएगी। जैसे अगर आप 12 बजे खाना खाना आपका फिक्स है कि मैं 12 बजे खाना खाता हूँ, तो आप जिस दिन 12 बजे खाना नहीं खाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज, आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी आप उस चीज से, आपको उस चीज की हैबिट हो गई है। तो गेट हैबिचुएटेड यानी किसी भी चीज की आदत होना। स्टेरिलाइज्ड, कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। जैसा कि बच्चों जब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि क्या एचआईवी पेशेंट को ब्लड डोनेट करना सेफ है, तो डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि जो हाँ ये पूरी तरह सेफ है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो स्टेरिलाइज्ड होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो निडल हो या अगर ऑपरेशन है तो सीजर्स वगैरह हो, तो उन्हें एक पूरी प्रोसेस के जरिए पूरी तरह साफ किया जाता है, उन्हें जर्म फ्री बनाया जाता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूटली, टोटली फुली। एब्सोल्यूटली यानी पूरी तरह से, फुल मतलब पूर्ण रूप से। गेट रिड ऑफ, टू बी फ्री फ्रॉम। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना। जैसा कि गौतम पूछते हैं कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट ऑफ च्यूइंग गुटका, तो मतलब मैं कैसे इस गुटका चबाने की आदत से छुटकारा पा सकता हूँ, कैसे उससे आजाद हो सकता हूँ। तो गेट रिड ऑफ, टू बी फ्री फ्रॉम। डोनेट, टू गिव इन चैरिटी। डोनेट का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज दान में दे देते हैं, आप किसी भी चीज को दान कर देते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द सिटीज में नेकी की दीवार वगैरह होता है, जहाँ आप अपनी जो पर्सनल चीजें जो आप यूज नहीं करते हैं वो जाके वहाँ पे छोड़ के आ सकते हैं, जिससे वहाँ से जिस जो जरूरतमंद है वो वहाँ से वो चीज ले ले। तो डोनेट करना मतलब किसी भी चीज को दान में देना होता है। नेक्स्ट है गेट कैरिड अवे, गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। गेट कैरिड अवे मतलब किसी भी चीज के बहकावे में आ जाना, किसी भी चीज से प्रभावित हो जाना। जैसा कि हमारे इस चैप्टर में डॉक्टर स्मिता गरासिया मूमल को बोलती हैं कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय टीवी एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर, यानी टीवी एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर के बहकावे में मत आइए। हम भी देखते हैं, जो हम टीवीज में देखते हैं, हम जो फिल्मों में देखते हैं, हम उससे बहुत जल्दी इंस्पिरेशन ले लेते हैं, हम उनके बहकावे में आ जाते हैं कि अगर एक हीरो ने एक मुक्के में 10 विलन्स को गिराया तो हम लोग लाइक हम इंस्पायर होते कि यार वी कैन ऑल्सो डू। बट डोंट गेट कैरिड अवे, इनके बहकावे में नहीं आना है। तो गेट कैरिड अवे यानी किसी भी चीज के बहकावे में आना, किसी भी चीज से प्रभावित हो जाना। पर्ज, प्यूरिफाई। पर्ज का मतलब होता है प्यूरिफाई यानी शुद्धि, किसी भी चीज की शुद्धि होना। एम्पल, प्लेंटी ऑफ। बच्चों एम्पल का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ यानी सही मात्रा में। जैसा कि डॉक्टर स्मिता गरासिया मूमल को सजेस्ट करती हैं कि ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी सही मात्रा में, जो आपकी बॉडी के लिए सही हो, जो सही है उतनी मात्रा में पानी पीना है। तो एम्पल यानी प्लेंटी ऑफ, सही मात्रा में। अब बच्चों एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और आपको बताना है कि यह सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स। तो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस, द वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की केंद्रीय सरकार ने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, यानी दिल्ली में उसका आयोजन किया था। तो बच्चों यह सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, इसका आंसर पता करने के लिए हम देखेंगे पेज नंबर 75 पर जहां पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूथ क्लब इन जयपुर। तो यह जयपुर में यूथ क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था। तो अब आपका यह जो सेंटेंस है वह क्या हुआ, आपका यह सेंटेंस हुआ फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश वॉज लेबोरियस इंटेलिजेंट एंड स्कॉलर। रमेश एक मेहनती बुद्धिमान और ज्ञानी था। तो यह सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स। बच्चों इसका राइट आंसर जानने के लिए हम जो डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर गरासिया, रमेश, इनकी जो भी कन्वर्सेशन है उसको पढ़ेंगे। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रमेश कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था उसकी स्टडीज पे, जिसकी वजह से ना तो वो मेहनत कर पा रहा था, मेहनत नहीं कर पा रहा था तो वो बुद्धिमान भी नहीं था और ना ही ज्ञानी था। तो आपका यह सेंटेंस कि रमेश वॉज लेबोरियस इंटेलिजेंट एंड स्कॉलर, यह फॉल्स है। नेक्स्ट, योगा हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, स्ट्रेंथन्स द माइंड एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। योग पढ़ाई पर ध्यान लगाने, दिमाग को मजबूत करने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बच्चों यह सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, इसका आंसर जानने के लिए हम देखेंगे पेज नंबर 76 पर। 76 पर जब हम नीचे से फोर्थ नंबर पर डॉक्टर भटनागर कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, योग विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन योर माइंड विच विल आल्सो हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। तो अब बच्चों आप बताएं कि आपका जो यह सेंटेंस है वह ट्रू है या फॉल्स। आपका यह सेंटेंस ट्रू है, तो थर्ड वाला आंसर हुआ ट्रू। नेक्स्ट, द डोनर ऑफ ब्लड कांट एक्वायर HIV। रक्त को दान करने वाले को रक्तदान के द्वारा HIV नहीं हो सकता। तो यह सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, इसका आंसर आपको बच्चों मिलेगा पेज नंबर 77 पर। आप देखेंगे कि लास्ट से सेकंड नंबर पर जहां डॉक्टर भटनागर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहां बातचीत कर रहे हैं, वहां पे वो बताते हैं कि इट इज क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन HIV पेशेंट, द ब्लड डोनर कांट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड। तो अब बच्चों आप बताएंगे कि आपका यह जो सेंटेंस है यह ट्रू है या फॉल्स। यह सेंटेंस ट्रू है। अब नंबर 5, रमेश, मूमल, रहीम एंड गौतम वर नॉट सेटिस्फाइड विद द काउंसलर्स। रमेश, मूमल, रहीम और गौतम काउंसलर्स के सॉल्यूशन से या काउंसलर से सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं हुए, नहीं थे। तो बच्चों यह सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स। बच्चों यह सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हर सॉल्यूशन के बाद, जैसे रमेश को दिया गया, मूमल को दिया गया हो या रहीम या गौतम को सॉल्यूशन दिया गया हो, सारे बच्चे उनके सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड थे। तो आपका यह सेंटेंस क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 15 वर्ड्स ईच। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही छोटे रूप में 10 से 15 शब्दों में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड, हु ऑर्गेनाइज्ड इट? वीडियो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई और इसका आयोजन किसने किया? तो बच्चों, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? इसका आंसर आपको पेज नंबर 75 पर, जहां पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप वहीं देखेंगे, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मिली आपको बच्चों ये लाइन? आपके चैप्टर की स्टार्टिंग लाइन ही है। अ वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूथ क्लब इन जयपुर। तो आपका आंसर क्या होगा? द वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ क्लब इन जयपुर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वर द काउंसलर्स? काउंसलर्स कौन थे? अब बच्चों, आपको काउंसलर का मतलब तो पता ही है, जो आपको गाइड करता है, जो आपको सलाह देते हैं। तो काउंसलर कौन थे? इसका आंसर जानने के लिए बच्चों, हम फिर पेज नंबर 75 के उसी पैरा को देखेंगे, जहां पे लिखा हुआ है ना, टीनेजर्स डिस्कस देयर प्रॉब्लम विथ वेल नोन काउंसलर डॉक्टर भटनागर एंड डॉक्टर स्मिता गरासिया। तो अब राइट आंसर क्या हुआ? डॉक्टर भटनागर एंड डॉक्टर स्मिता गरासिया वर द काउंसलर। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विथ नेम्स एंड प्लेसेस पार्टिसिपेटेड इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस? इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कितने स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, उनके नाम और उनकी जगह के नाम सहित बताइए। तो बच्चों, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका आंसर जानने के लिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया और उनका नाम क्या था और वो कहाँ से थे। तो इसका राइट आंसर, 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट, रमेश फ्रॉम दूदू जयपुर, मूमल फ्रॉम बूंदी, रहीम फ्रॉम पोखरण एंड गौतम फ्रॉम देवली उदयपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल योगा बी हेल्पफुल टू रमेश? रमेश के लिए योग किस प्रकार हेल्पफुल हो सकते हैं या किस प्रकार योग रमेश की हेल्प करेंगे? तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 76 में, नीचे से 4th नंबर पर, जहां डॉक्टर भटनागर रमेश को एडवाइस कर रहे होते हैं, उसे सलाह दे रहे होते हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि वहां लिखा हुआ है, योग विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन योर माइंड विच विल आल्सो हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। तो आपका आंसर होगा, योग विल strengthen Ramesh's mind, which will help him to concentrate on his studies and build up confidence. In this way, yoga will be helpful to Ramesh. Ab next question, what suggestions were given to Moomal for her friend's problem? Moomal ko uske dost ki samasya ke liye kya salah di gayi? To bachcho, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 77 पर, जहां पर मूमल और डॉक्टर गरासिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कैसे लिखेंगे हम बच्चों, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रीड किया है। तो आई होप कि आप इसका आंसर खुद प्रिपेयर कर पाएंगे। बच्चों, अगर आप इसका आंसर सही से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने टीचर से इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद प्रिपेयर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज इट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन एचआईवी पेशेंट? एक एचआईवी पेशेंट को ब्लड डोनेट करना क्यों सेफ है? एक एचआईवी पेशेंट को रक्तदान करना क्यों सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर आपको कहां मिलेगा? इसका राइट आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 77 पर, जहां नीचे से सेकंड नंबर पर डॉक्टर भटनागर रहीम को बता रहे हैं दैट इट इज क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन एचआईवी पेशेंट, द ब्लड डोनर कांट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इट इज सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन एचआईवी पेशेंट बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी सेकेंड की तरफ। एक्टिविटी सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। नहीं, आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दे रखे हैं, तो आपको कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के उनके मीनिंग्स के साथ मैच करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, काउंसलर। बच्चों आपको मैंने बताया था काउंसलर का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो आपको एडवाइस करता है, जो आपको गाइड करता है। तो इसका राइट मैच आपको कहां मिलेगा? इसका राइट मैच है सिक्स नंबर पर, जहां लिखा हुआ है एडवाइजर। तो काउंसलर का राइट मैच एडवाइजर। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेट करना मतलब आपका सारा अटेंशन, सारा ध्यान एक चीज पर लगा देना, एक तरफ लगा देना। तो इसका राइट मैच आपको कहां मिलेगा? इसका राइट मैच आपको मिलेगा कॉलम बी के फोर्थ नंबर पर, गिव ऑल अटेंशन टू। अब नंबर थ्री, इनडिसिसिव। अब बच्चों इनडिसिसिव क्या होता है? इनडिसिसिव ऐसा इंसान होता है जो कोई भी डिसीजन आसानी से या जल्दी से नहीं ले पाता, उसे कहते हैं इनडिसिसिव। तो इसका राइट मैच कहां पर है? इसका राइट मैच सेवेंथ नंबर पर है, वन हु कांट टेक डिसीजंस क्विकली। तो इनडिसिसिव का राइट मैच वन हु कांट टेक डिसीजंस क्विकली। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। अब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी बने रहना और फुल ऑफ होप। तो ऑप्टिमिस्टिक का राइट मैच कहां मिलेगा? ऑप्टिमिस्टिक का राइट मैच है कॉलम बी का थर्ड, टू बी होपफुल। तो ऑप्टिमिस्टिक टू बी होपफुल। हैबिचुएटेड। अब हैबिचुएटेड का मतलब क्या होता है? हैबिचुएटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज की आदत हो जाना। तो अब इसका राइट मैच कहां मिलेगा? इसका राइट मैच आपको कॉलम बी का फर्स्ट, गेट यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू। नेक्स्ट, डोनेट। डोनेट का मतलब किसी भी चीज को दान में देना होता है। तो अब डोनेट का राइट मैच कॉलम बी में सेकंड पर, टू गिव इन चैरिटी। अब लास्ट, स्टेरिलाइज्ड। अब स्टेरिलाइज्ड का राइट मैच नंबर फिफ्थ पर, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब हम बच्चों क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको फाइव वर्ड्स दे रखे हैं, उनके मीनिंग्स के हिसाब से आपको उन्हें सही जगह फिल करना है ब्लैंक्स में। तो फाइव वर्ड्स हैं हैबिट, इनडिसिसिवनेस, इंगेज, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। हैबिट का मतलब है आदत, इनडिसिसिवनेस कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाना, इंगेज शामिल होना, ट्रस्ट भरोसा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। तो अब पहला, द मेयर वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द पार्टी वर्कर फॉर हिज, मेयर को अपने पार्टी वर्कर से हमेशा आलोचना सहनी पड़ती थी उसकी। अब यहाँ पे क्या राइट मैच हो सकता है, यहाँ पे कौन सा वर्ड हम पुट कर सकते हैं? यहाँ पर राइट वर्ड होगा इनडिसिसिवनेस। द मेयर वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द पार्टी वर्कर फॉर हिज इनडिसिसिवनेस, मेयर को अपनी निर्णय नहीं ले पाने की क्षमता के कारण हमेशा अपने पार्टी वर्कर से आलोचना सहनी पड़ती थी। नेक्स्ट, इफ यू से समथिंग विथ ब्लैंक यू विल फील दैट इट इज करेक्ट, अगर तुम कुछ कहते हो के साथ तुम महसूस करोगे कि वह सही है। तो इसका राइट मैच क्या हो सकता है, हम किस चीज के साथ कोई बात कहेंगे तो हमें वो लगेगा कि वह सही है? इसका राइट मैच है कॉन्फिडेंस। इफ यू से समथिंग विद कॉन्फिडेंस यू विल फील दैट इट इज करेक्ट, अगर आप कोई बात पूरे विश्वास के साथ कहते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि वह सही है। नेक्स्ट, ही हैज अ बैड ब्लैंक ऑफ बाइटिंग हिज नेल्स व्हेन ही इज नर्वस, उसे बहुत बुरी ब्लैंक ऑफ बाइटिंग हिज नेल, नाखून चबाने की जब वह नर्वस होता है। तो अब नाखून चबाने की बुरी क्या हो सकती है, नाखून चबाने की बुरी आदत हो सकती है। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड पुट कर सकते हैं, ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज नेल्स व्हेन ही इज नर्वस। अब नेक्स्ट, शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्लैंक विथ हर ऑफिस लाइफ, उसे बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही थी उसकी ऑफिस लाइफ के साथ। तो बच्चों यहाँ पे क्या सही वर्ड है जिसे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं इंगेज को। शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंगेज विथ हर ऑफिस लाइफ, उसे अपनी ऑफिस लाइफ में शामिल होने में कठिनाई महसूस हो रही थी। नेक्स्ट, माई टीचर असाइंड द टास्क टू मी बिकॉज दे हैड ब्लैंक इन मी, मेरे टीचर्स ने मुझे यह टास्क इसलिए दिया बिकॉज उन्हें मुझ पर ब्लैंक है। तो इसका राइट वर्ड क्या हो सकता है, इसका राइट वर्ड है ट्रस्ट। माय टीचर्स असाइंड द टास्क टू मी बिकॉज दे हैड ट्रस्ट इन मी, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। अब बच्चों हम एक्टिविटी थर्ड देखेंगे। आपकी जो एक्टिविटी थर्ड है उसमें आपको 8 पिक्चर्स दे रखी हैं और हर पिक्चर्स के नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो आप पहले हम उन पिक्चर्स को देखेंगे, देन उनके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, और समझने की कोशिश करेंगे कि इन 8 पिक्चर्स में क्या बताया जा रहा है। तो पहला पिक्चर में एक बैग है और बैग के अंदर कोई चीज रखी हुई है और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है इन द बैग, यानी बैग में। सेकंड पिक्चर में एक टेबल है जिसके ऊपर फ्लावर वास रखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है ऑन द टेबल, यानी टेबल पर। अबोव द हील्स, आप देखेंगे कि थर्ड पिक्चर में हील्स बनी हुई है और उसके ऊपर सन बना हुआ है, तो हील्स के ऊपर। ओवर द मैन, आप देखेंगे कि जो फोर्थ पिक्चर है उसमें एक मैन है और उसके ऊपर एक फैन है, शायद उसी के बारे में बात हो रही है, और लिखा हुआ है ओवर द मैन, यानी मैन के ऊपर। गोइंग इन टू द टनल, आप देखेंगे कि जो फिफ्थ नंबर का पिक्चर है उसमें एक टनल बनी हुई है और एक कार उस टनल के अंदर जा रही है। नंबर 6, अंडर द टेबल, सिक्स पिक्चर में एक टेबल है जिसके नीचे एक रैबिट बैठा हुआ है। पिक्चर नंबर 7, बिटवीन द टू बॉयज, यानी दो लड़के हैं और उनके बीच एक चेयर रखी हुई है। पिक्चर नंबर 8, अमोंग द बर्ड्स, आप देखेंगे पिक्चर नंबर 8 में बर्ड्स के बीच एक स्क्विरल है, एक गिलहरी है, उसके बारे में बात हो रही है। अब बच्चों आप देखेंगे कि हर पिक्चर के नीचे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं उनमें किसी पर्टिकुलर एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन की हुई है। बच्चों यह वर्ड प्रीपोजिशन है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, तो प्रीपोजिशन भी, तो प्रीपोजिशन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होते हैं। प्रीपोजिशन का मेन मकसद या उनका जो मेन काम होता है वह ये होता है कि वो जो आपके नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको बाकी जो सेंटेंस है उसके साथ जोड़ देते हैं, यानी वो नाउन या प्रोनाउन का बाकी के सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। तो प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। तो अब हम इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों ग्रामर की किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको उसकी एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशन हम पुट करेंगे और वो प्रीपोजिशन कैसे बाकी सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे। तो ये समझने के लिए हम एक्सरसाइज करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे फिल करना है। तो आपकी पहली इसका आपकी एक्टिविटी 3 का पहला क्वेश्चन है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स प्रीपोजिशन गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको हर सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में दो प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, आपको राइट प्रीपोजिशन जो वहां पर सही तरह उस सेंटेंस को जोड़ेगा उसे फिल करना है। तो पहला, शी पुट हर बुक द पिलो, और आपको दो प्रीपोजिशन दे रखे हैं, अंदर या अबो। अब बच्चों अगर हम ये मानते हैं कि उसने बुक जो पिलो है उसके ऊपर रखी, तो यहां पे ऑन हो सकता था। अबोव और ऑन का काम बहुत अलग अलग होता है, तो हम जब पिक्चर नंबर 2 और 3 को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अगर वो पिलो के जस्ट ऊपर रखने की बात कर रही होते तो वो ऑप्शन में ऑन देते। अब हम यही मान के चलेंगे कि जो बुक है वो पिलो के नीचे है, तो यहाँ पे राइट वर्ड होगा शी पुट हर बुक अंडर द पिलो, उसने अपनी किताब तकिए के नीचे रखी। नंबर 2, अ स्मॉल टेबल वॉज केप्ट ब्लैंक द 2 चेयर। अब आप देखेंगे पिक्चर नंबर 7 और पिक्चर नंबर 8। जब आप पिक्चर नंबर 7 देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तो हम राइट प्रीपोजिशन क्या बनता है वहां पर, बिटवीन। तो आपके सेकेंड सेंटेंस में राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, बिटवीन। अ स्मॉल टेबल वॉज केप्ट बिटवीन द 2 चेयर्स। नंबर 3, हरी वर्क्स ब्लैंक अ फैक्ट्री। हरी फैक्ट्री में काम करता है। अब आप देखेंगे पिक्चर नंबर 1 को और पिक्चर नंबर 5 को, हरी फैक्ट्री में काम करता है, तो यहां पे राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, यहां पे राइट प्रीपोजिशन होगा इन। हरी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, हरी एक फैक्ट्री में काम करता है। नेक्स्ट है, द काइट वॉज फ्लाइंग ब्लैंक अवर हेड्स, ओवर और अंदर। जो पतंग है वो हमारे सर के ऊपर उड़ती है, तो इसका राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, इसका राइट प्रीपोजिशन पता करने के लिए हम देखेंगे पिक्चर नंबर 4। तो जब हम पिक्चर नंबर 4 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पे राइट प्रीपोजिशन होगा ओवर, द काइट वॉज फ्लाइंग ओवर अवर हेड। नंबर 4, डिवाइड दिस चॉकलेट ब्लैंक द स्टूडेंट। अब इसके लिए हम देखेंगे पिक्चर नंबर 8 को, और पिक्चर नंबर 8 को देखने के बाद अब यहां पे सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा, यहां पे सुटेबल प्रीपोजिशन होगा अमोंग, डिवाइड दिस चॉकलेट्स अमोंग द स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स में ये चॉकलेट बांट दो। नंबर 6, मीना कैप्ट द वेजिटेबल ब्लैंक द टेबल। अब उसने वेजिटेबल टेबल के जस्ट ऊपर रखी है, और हम देखेंगे पिक्चर नंबर सेकंड को ऑन द टेबल। तो यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन क्या हुआ, यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन हुआ ऑन। मीना कैप्ट द वेजिटेबल ऑन द टेबल। नेक्स्ट, आई कुड ओनली सी हर हेड ब्लैंक द वॉटर। अब अबो या ओवर, मैं उसका पानी के ऊपर सिर्फ सर देख पा रही हूं। तो ये देखने पता करने के लिए हम देखेंगे पिक्चर नंबर 3 और 4 को। अब यहां पे राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, यहां पे राइट प्रीपोजिशन होगा अबो। आई कुड ओनली सी हर हेड अबोव द वॉटर। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, अबो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक ब्लैंक द टू सिस्टर्स। अब इसका सुटेबल प्रीपोजिशन बिटवीन है या अमोंग, तो आप देखेंगे पिक्चर नंबर 7, जब दो लोगों के बीच की बात हो रही हो तो राइट प्रीपोजिशन होता है बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स बिटवीन द टू सिस्टर्स। अब नंबर 9, शी क्वाइटली वॉक ब्लैंक द रूम। वो चुपचाप चलती हुई आ गई रूम में। तो जब आप देखेंगे कि रूम के अंदर आ गई वो, और आप पिक्चर नंबर 5 देखेंगे गोइंग इन टू द टनल, जब अंदर आने की बात हो रही होती है तो राइट प्रीपोजिशन इन होगा या इन टू, यहां पे राइट प्रीपोजिशन होगा इन टू। शी क्वाइटली वॉक्ड इन टू द रूम। अब बच्चों 10th है, संगीता जंप्ड ब्लैंक द पूल फॉर स्विमिंग, इन और इन टू। संगीता पूल में जंप कर गई स्विमिंग के लिए, तो यहां पर इन आएगा या इन टू, यहां पे राइट प्रीपोजिशन होगा इन टू, क्योंकि वो पुल में, पुल के अंदर कूद गई। तो बच्चों अगर आपको प्रीपोजिशंस समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रीपोजिशंस में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होती है तो अपने टीचर्स से जरूर कंसल्ट करें इस बारे में। और बच्चों आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रीपोजिशंस अच्छे से समझ में आएंगे और आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपोजिशन एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ द इशूज डिस्कस्ड इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड सजेशन गिवन बाय द काउंसलर, एड योर ओन सजेशंस ऑल्सो, लेट द ग्रुप्स रीड आउट द इशूज एंड देयर सजेशंस। आप जो इशूज, जो समस्याओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया और जो काउंसलर्स ने सजेशन दिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और अपनी तरफ से भी उन समस्याओं पर सजेशन ऐड कीजिए और क्लास में उन इश्यूज और सजेशन को रीड कीजिए। तो बच्चों यह क्लास एक्टिविटी है, तो जो आप अपने टीचर की हेल्प से क्लास में जरूर कीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 5, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स एंड डिस्कस मेजर इशू बीइंग फेस्ड बाय द पीयर ग्रुप्स सेम एज ग्रुप, स्पीक आउट देम इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, फाइंड सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द इशूज, राइट डाउन द प्रॉब्लम विद देयर पॉसिबल सॉल्यूशन। तो बच्चों आपकी एक्टिविटी नंबर 5 भी एक क्लास एक्टिविटी है जिसमें आपको पूरी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और जो भी इश्यूज एक समान उम्र के लोगों द्वारा फेस किए जाते हैं, जिनका सामना किया जाता है, उनके बारे में बात करनी है। तो आपको पहले अपनी टीचर की हेल्प से उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करनी है और आपको वो सारी समस्याएं राइट डाउन करनी है और उनके सॉल्यूशन भी। अब एक्टिविटी नंबर 6, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स एंड रीड दिस पोएम अलाउड इन द क्लास। आपको पूरी क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और इस पोएम को पढ़ना है। तो मैं आपको एक बार ये पोएम पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप क्लास में इसको अच्छे से रीड करें। और ये क्लास एक्टिविटी है तो आपके टीचर्स की हेल्प से आप इसे क्लास में जरूर करें। डोंट क्विट, इस पोएम का नाम है डोंट क्विट। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, when the road you are trudging seems uphill, when the funds are low and the debts are high, when you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. तो बच्चों, आज हमने आपके चैप्टर नंबर 14 यू कैन डू की एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज सॉल्व की. आप ये चैप्टर एक बार फिर से रीरीड कीजिएगा ताकि आपको बिना किसी के हेल्प के भी आप ये एक्टिविटी अच्छे से सॉल्व कर सके. अगर आपको किसी भी एक्टिविटी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स, अपने घर के बड़ों, इन सब की हेल्प लेंगे और उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो आप अपना सॉल्यूशन आपके बड़े, आपके टीचर से लेंगे. और बस इसी के साथ हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे. तो गुड लक फॉर योर स्टडीज, वर्क हार्ड एंड बी स्मार्ट.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.